नमस्कार भारत 20 जुलाई सोमवार, मैं हूं निखिल रंजन। मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही है बारिश, उज्जैन और इंदौर पानी पानी। मानसून सत्र से पहले बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी तो विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में।
साहब की सरकार एक साल से यही बात कह रही है कि बिना भ्रष्टाचार की सरकार देंगे वो, और एक ही साल के अंदर इतने सारे कांड जो है बाहर निकल गया है।
इस्लामिक स्टेट को रोकने के लिए ब्रिटेन देगा अमेरिका का साथ, लेकिन विपक्षी दलों को सरकार के रुख पर एतराज।
We have to destroy this caliphate, whether it is in Iraq or in Syria. That is a key part.
सुनेंगे आरुषि के लेखक से बातचीत का दूसरा हिस्सा और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा खराब हालत उज्जैन में है, जहां बारिश ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है और वहां कई मंदिर पूरी तरह से डूब गए हैं। आशंका है कि बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रह सकती है। यमन के दक्षिणी शहर अदन में हूती विद्रोहियों की गोलीबारी में कम 43 लोगों की मौत हो गई है। यमनी अधिकारियों के मुताबिक सरकारी सेनाओं के शहर पर पकड़ मजबूत बनाने की कोशिशों के बीच रविवार को हुई इस गोलीबारी में 100 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। अदन में महीनों से विद्रोहियों और सरकार समर्थकों के बीच भारी संघर्ष हो रहा है। अमेरिका में बराक ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ हुए न्यूक्लियर समझौते को समीक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस के पास भेज दिया है। अमेरिकी कांग्रेस के पास समझौते की समीक्षा के लिए 2 महीने का वक्त है। समझौते के मुताबिक ईरान पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों में ढील दी गई है और इसके एवज में ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को खासा सीमित करना होगा। इस समझौते का रिपब्लिकन पार्टी कड़ा विरोध कर रही है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन्स का बहुमत है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्कल ने कहा है कि वो ग्रीस को दिए गए ऋण पर छूट दिए जाने की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले वहां पर आर्थिक सुधार के प्रयासों की रूपरेखा तैयार होनी जरूरी है। एक जर्मन टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में मेर्कल ने कहा कि ऋण में पूरी राहत दिए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेर्कल ने कहा, पहली बात तो ये है कि ग्रीस को पहले ही ऋण में थोड़ी राहत दी जा चुकी है। हम लोन की मियाद बढ़ा चुके हैं और ब्याज दर भी कम कर चुके हैं। एक बार बेलआउट पैकेज की समीक्षा हो जाए तो हम फिर से इन विकल्पों पर बात कर सकते हैं, लेकिन ऋण में 30-40% तक की छूट देना तो मुमकिन कतई नहीं है। ये थी जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्कल। फ्रांस के मशहूर फ्रेंच रिवेरा बीच को बंद करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस सप्ताह के अंत में सऊदी के शाह सलमान फ्रांस छुट्टियां मनाने आएंगे और इस दौरान आम लोगों के समुद्र तट पर जाने पर प्रतिबंध होगा। फ्रेंच रिवेरा बीच में दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। शाह सलमान के साथ 400 लोगों का दल भी फ्रांस पहुँच रहा है। जापान की मशहूर कंपनी मित्सुबिशी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमरीकी कैदियों को जबरन मजदूर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पहली बार सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात पर अफसोस जताया कि विश्व युद्ध के दौरान कंपनी की खानों में अमरीकी कैदियों से जबरन काम कराया गया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन, bbchindi.com और मोबाइल पर भी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। खासतौर से उज्जैन का करीब आधा हिस्सा भरपूर पानी में डूबा है। सड़कें, रेल लाइन और सब जगह पानी भर गया है। बहुत से मंदिरों का ये हाल है कि उनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। बारिश के कारण अब तक कुछ लोगों के मरने की भी बात सामने आई है। बारिश के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए मैंने अब से कुछ ही देर पहले स्थानीय पत्रकार शुरे नियाजी से बात की।
देखिए, मध्य प्रदेश में तकरीबन सभी जगह लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। हालांकि कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर रुक रुक कर हो रही है, लेकिन इंदौर और उज्जैन ऐसे 2 शहर हैं जहां पर काफी बारिश हुई है। और इसके चलते मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 3 बच्चों सहित 6 लोग बह गए हैं और अब तक उसके अलावा 7 मौतें हो चुकी हैं। वहीं सबसे बुरी हालत जो है वो उज्जैन में है, जहां पर पिछले 24 घंटे में 18 इंच बारिश हो गई है और इंदौर में 9 इंच बारिश हुई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा जो शहर है, खास तौर पे उज्जैन शहर है, वहां पे जो शिप्रा नदी है उसके पुल से 10 फीट ऊपर पानी बह रहा है। रेलवे ट्रैक जो है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो जो रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो सब रुक गई हैं। बिजली और टेलीफोन सेवा भी वहां पर ठप हो गई है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी दी है कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, नीमच में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो देखने में आ रहा है कि प्रशासन ने बाढ़ के अलर्ट भी जारी किए हैं इन जगहों पर, तो स्थिति काफी खराब हो रही है यहाँ पर। जनजीवन एक तरह से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है।
क्या कुछ लोगों को अपना घर छोड़ करके भी जाना पड़ा है?
जी जी बिल्कुल, उज्जैन शहर और इंदौर दोनों जगह में जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को खाली कराया गया है और राहत शिविर लगाए गए हैं, तो उसमें लोगों को पहुंचाया गया है, जहां पर जो प्रशासन है खाने की व्यवस्था कर रहा है और अन्य व्यवस्थाएं कर रहा है। लेकिन स्थिति देखने में आ रही है कि तकरीबन पूरे शहर में, उज्जैन में 2 फीट तक पानी भरा हुआ है, शहर में नाव चल रही है, यही स्थिति इंदौर में भी देखने में आ रही है।
आपने अभी कहा कि 18 इंच बारिश हुई है उज्जैन में, ये आंकड़े कहाँ से लिए हैं?
देखिए, ये मौसम विभाग जो है इसने ये आंकड़े जारी किए हैं, पिछले 24 घंटे में वहां पर 18 इंच बारिश हो गई है। तो स्थिति उज्जैन शहर में देखने में आ रहा है कि हम देख रहे थे कि 2-3 दिन पहले तक वहां पर प्रार्थनाएं हो रही थी बारिश को लेकर, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है वहां पर और लोग अब बारिश से परेशान हो चुके हैं।
मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक राहत मिल पाएगी?
देखिए, मंगलवार यानी कि कल तक की चेतावनी जारी की गई है कि मंगलवार तक मुमकिन है कि ऐसी ही बारिश जारी रहे, तो स्थिति और भी विकट हो सकती है इसके चलते, मुझे जो लगता है।
भोपाल से स्थानीय पत्रकार शुरे नियाजी। देश के दूसरे इलाकों से भी बारिश की खबर है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर जमीन धंस गई और सड़कों पर मलबा जमा हो गया। देहरादून से शिव जोशी ने ये जानकारी भेजी है।
पिछले 3 दिनों से लगातार यहां पर बारिश जारी है उत्तराखंड में, और जो मौसम विभाग ने जो प्रेडिक्शन दी है अगले 3 दिनों के लिए, भारी से अपेक्षाकृत भारी बारिश यहां पर हो सकती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में जिनमें की चारधाम जो यात्रा मार्ग है वे और जो पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर ज्यादा सजगता बरतने के लिए कहा गया है। अभी जो स्थिति है, बद्रीनाथ में फिलहाल कई जगहों पर अवरोध है, सड़क पर मलबा आया हुआ है, इसलिए वहां पर यात्रा रुकी हुई है। केदारनाथ में रविवार को यात्रा कुछ यात्रियों को भेजा गया था, लेकिन आज वहां क्या स्थिति रहेगी कहना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से गंगोत्री और यमुनोत्री में भी यात्रा रुक कर जारी है। दूसरी तरफ सड़कों पर मलबा कई जगह पर आ रहा है, कई जगह भूस्खलन की खबरें भी मिल रही हैं। यात्रियों को ताकीद की गई है कि वे जो बहुत संवेदनशील जगहें हैं उन जान पर जाने से बचें।
देहरादून से शिव जोशी। मौसम विभाग का कहना है कि देश भर में अभी बारिश होते रहेंगे, मंगलवार से पहले इसमें कमी की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर LS राठौर ने दिल्ली में BBC से बातचीत में कहा,
भारी और भारी बारिश से अधिक बारिश की भी संभावना बनी रहेगी उत्तराखंड में, और जहां तक आसाम की बाढ़ का कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है जहां से ये नदियां आती है, वहां उन क्षेत्रों में बारिश होने से पानी नीचे ज्यादा आता है, और अगर ऐसी अवस्था में आसाम के मैदानी भागों में अगर बारिश ज्यादा होती है तो समस्या जो है बढ़ जाती है, कंपाउंड हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वहां पर भी स्थिति कमोबेश रहेगी।
मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर LS राठौड़। मध्य प्रदेश की बारिश का ये हाल हुआ कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली के लिए उड़ान भरने के 10 मिनट के बाद वापस लौटना पड़ा और फिर वो 2 घंटे बाद कमर्शियल फ्लाइट लेकर दिल्ली आए। कल शाम BJP के अध्यक्ष अमित शाह से उनके घर पर उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थीं। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। BBC हिंदी की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ। संसद का मानसून सत्र कल यानी मंगलवार से शुरू हो रहा है। विपक्ष भ्रष्टाचार और भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के इरादे में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्ष से मुकाबले के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के साथ अशोक कुमार।
मानसून के मौसम में भारतीय राजनीति की जमीन तपने लगी है। मंगलवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उसके पहले विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस व्यापम घोटाले और ललित मोदी की कथित मदद को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर वामपंथी दल आज देशव्यापी प्रदर्शन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने के इरादे से सड़कों पर उतरेंगे। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने बीबीसी को बताया,
साहब की सरकार एक साल से यही बात कह रही है कि बिना भ्रष्टाचार की सरकार देंगे वो, और एक ही साल के अंदर इतने सारे कांड जो है बाहर निकल गया है। पार्लियामेंट के भीतर इन सवालों पे कांग्रेस के साथ आने में हमें कोई संकोच नहीं है, और वही हमारी प्रयास रहेगी। पिछले बार भी तो ये भूमि अधिग्रहण के बिल के बारे में हम लोग सब इकट्ठा हो गए थे।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उनकी पार्टी संसद के अंदर सरकार से तीखे सवाल पूछेगी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की कथित मदद के आरोपों को लेकर कांग्रेस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हटाने की मांग कर रही है। वहीं व्यापम घोटाले के सिलसिले में मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कहते हैं,
एनडीए लोगों की भावनाओं का कोई आदर नहीं करती है। मॉनसून का सेशन आया है, मैं विश्वास करता हूं कि सेशन शुरू होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में इसी से अपनी तकरीर आरंभ करेंगे कि उन्होंने ललित गेट में जिन पर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, ये उनके इस्तीफे अनाउंस करेंगे।
दूसरी तरफ सरकार ने भी विपक्ष के मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जैसे सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग की और मॉनसून सत्र के लिए रणनीति तैयार की। इस मीटिंग के बाद पार्टी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने साफ किया कि विपक्ष के निशाने पर आए राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी पूरी तरह से खड़ी हुई है।
पार्टी पूरी तरह से अपने नेताओं के साथ है, हमारे लोकप्रिय दोनों मुख्यमंत्री हैं, और दोनों के ऊपर ही जो चार्ज विपक्ष के द्वारा लगाए गए थे वो बिल्कुल तथ्यहीन है, वो तथ्यों से बिल्कुल परे हैं। देखिए, हमारी रणनीति बहुत सकारात्मक है और हम चाहते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ हम सरकार में हैं, और हम विपक्ष को भी कहेंगे कि देश के विकास में कोई अड़चन वो पैदा ना करें। अगर वो कंस्ट्रक्टिव कोई इशू लेकर आते हैं जिनको लगता है, तो हम सारे इश्यूज पे चर्चा के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इतना भी आग्रह है कि तथ्यात्मक विषय वो उठाएं।
मॉनसून सत्र से पहले सरकार एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तालमेल भी बेहतर करना चाहती है। इसके लिए आज प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक बुलाई है, लेकिन क्या इस बैठक में विपक्ष के हमले की धार कमजोर होने की कोई रणनीति निकल पाएगी, ये जानने में हर किसी की दिलचस्पी होगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे अशोक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए में शामिल दलों की मीटिंग बुलाई है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने शिवसेना नेता संजय राउत से पूछा कि क्या सरकार को मुश्किल में होने की वजह से सहयोगी दलों की याद आई है।
जो देखिए, कल का जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है वो तो बहुत धमाकेदार होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहली बार जो अपोजिशन है उसके हाथ में ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत कुछ उन्हें मिला है जो सरकार को घेर ले, और लगता है कि पूरी तैयारी के साथ वो उतरेंगे। लेकिन ये देखते हुए प्रधानमंत्री साहब ने पहली बार एनडीए की मीटिंग बुलाई है, ये मीटिंग के लिए शिवसेना ने बार बार आग्रह किया था प्रधानमंत्री से कि एनडीए की ताकत कमजोर मत कीजिए। आज सरकार की जब घेरने की कोशिश हो रही है तो जरूर हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुमत आज मिला है, लेकिन ये बहुमत का खेल जो होता है, बहुमत बहुत चंचल होता है हमारे डेमोक्रेसी में। आज आपके पास बहुमत है, कल बहुमत होगा नहीं होगा कोई बता नहीं सकता है। अगर एक सरकार एक मुकाबले के लिए तैयार है अपोजिशन के साथ, तो उस मुकाबले में अगर एनडीए के भी आपके साथी रहेंगे तो बहुत मजबूती से आप ये लड़ाई कर सकते हैं, ये हमारा कहना था।
सहयोगियों की याद आने में इतना लंबा वक्त क्यों लग गया प्रधानमंत्री को?
बहुत लंबा समय लिया है, लेकिन याद आ गई है, ये भी सच है। और हमें लगता है कि एक साल से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से एनडीए की कोई मीटिंग नहीं हुई, और एनडीए की मीटिंग नहीं हुई इसलिए कम्युनिकेशन गैप जो अलायंस पार्टी है उसमें सरकार के साथ एक कम्युनिकेशन गैप रही, संवाद नहीं रहा। अगर संवाद रहता तो आज जो नौबत आई है सरकार को घेरने की जो कोशिश हो रही है शायद वो नहीं होती।
तो ये संवादहीनता की वजह क्या रही, किस वजह से ये इतनी बड़ी संवादहीनता इतने लंबे समय तक?
भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बहुत बड़ा बहुमत इस बार मिला है, यही बड़ी संवादहीनता की वजह है। अगर ये बहुमत नहीं मिला होता तो जरूर एनडीए का महत्व और बढ़ता।
अब लेकिन शिवसेना ने भी लगातार केंद्र सरकार
और महाराष्ट्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, लेकिन जहां विपक्ष अब इतने तीखे तेवर के साथ सरकार को घेरने का मन बना रहा है, ऐसे में शिवसेना सरकार का किस तरह से बचाव करेगी, खासतौर पर बीजेपी का?
नहीं देखिए, हमारी एक अटैचमेंट है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट है, वो तो रहेगी। और सरकार को घेरने की जब कोशिश होगी तो जरूर हम सरकार के साथ, खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारी मांग यही है कि जो कुछ सरकार में चल रहा है आप उससे खुलकर बात करिए अपने अलायंस पार्टी के साथ। अगर आप हमसे छुपाएंगे तो मुझे लगता है कि दर्द कम नहीं होगा, दर्द बढ़ेगा, और हम भी आपके ऊपर इलाज कर सकते हैं। अगर आपकी जो दर्द है, हमारे पास भी कुछ ना कुछ दवा हो सकती है, हम भी इतने सालों से राजनीति में है।
शिवसेना नेता संजय राउत से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि दुनिया से इस्लामिक स्टेट जैसे खतरे को मिटाने के लिए ब्रिटेन को और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। टीवी चैनल एनबीसी से बातचीत में कैमरन ने कहा कि आईएस के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन अमरीका के साथ है, हालांकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अपने ही देश में इस मुद्दे पर विरोध झेलना पड़ रहा है। विपक्षी दल इस मामले में सरकार के रुख से सहमत नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रभात पांडे से।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने बिल्कुल साफ लहजे में कहा कि सीरिया में अगर इस्लामिक स्टेट को खत्म करना है तो ब्रिटेन की फौजों को जोरदार हमले करने होंगे। ब्रिटेन फिलहाल इराक में इस्लामिक स्टेट से लड़ने में इराकी फौज की मदद कर रहा है, लेकिन सीरिया में अभी वो आईएस के खिलाफ मैदान में नहीं उतरा है। अमेरिकन न्यूज नेटवर्क एनबीसी से बातचीत में कैमरन ने कहा कि ब्रिटेन सीरिया और इराक में आईएस को खत्म करने के अमरीकी मिशन में उसके साथ खड़ा है।
We have to destroy this caliphate, whether it is in Iraq or in Syria. That is a key part of defeating.
हमें इस्लामिक स्टेट जैसी शैतानी ताकतों को मिटाना ही होगा। दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि ब्रिटेन इस दिशा में और ज्यादा प्रयास करे। हाँ, ये जरूर है कि इसके लिए मुझे अपनी संसद को साथ लेना होगा। ये थे डेविड कैमरन के शब्द। दरअसल 2 साल पहले ब्रिटिश संसद ने कैमरन सरकार के उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था जिसमें सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। ब्रिटेन के विपक्षी दल लिबरल डेमोक्रेट के नए नेता टिम फेरन ने कहा कि वो कैमरन की बातों से बहुत चिंतित हैं और ब्रिटेन की फौज को लड़ाई में झोंक कर कैमरन इस्लामिक स्टेट की चाल में फंसते लग रहे हैं। स्काई न्यूज से बातचीत में फेरन ने कहा कि जरूरत तो इस बात की है कि आईएस प्रभावित इलाके में मुस्लिम समुदाय की कूटनीतिक तरीके से मदद की जाए और उन्हें विश्वास में लिया जाए। वहीं ब्रिटेन के पूर्व सेना प्रमुख लॉर्ड रिचर्ड्स ने भी आईएस से निपटने के लिए नई रणनीति की जरूरत जताई। रिचर्ड्स ने संभावना जताई कि भविष्य में ब्रिटेन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जमीनी लड़ाई छेड़ सकता है।
If we really want to get rid of them, and I think all the other parts of the strategy also necessary, the more political ones.
अगर हमें आईएस पर जीत हासिल करनी है तो हमें राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों के अलावा युद्ध स्तर पर लड़ाई छेड़नी होगी। हमें उनसे लड़ने के तरीके बदलने होंगे। ये थे ब्रिटेन के पूर्व सेना प्रमुख लॉर्ड रिचर्ड्स के शब्द। संभावना है कि सोमवार को डेविड कैमरन आईएस से निपटने की नई योजना के बारे में ब्रिटेन की जनता को संबोधित कर सकते हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे प्रभात पांडे। 2008 के आरुषि हत्याकांड में अदालत आरुषि के माता पिता नूपुर और राजेश तलवार को दोषी करार दे चुकी है, लेकिन कई लोगों के लिए हत्या का रहस्य आज भी बरकरार है। तलवार दंपति सभी आरोपों से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि किसी बाहरी शख्स ने घर में आकर ये हत्याएं की। पत्रकार अविरूप सेन ने आरुषि नाम की किताब लिखी है। उन्होंने किताब में सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और तलवार दंपति का बचाव किया है। विनीत खरे ने अविरूप सेन से पूछा कि वो सीबीआई जांचकर्ताओं के तरीकों पर क्या सवाल उठा रहे हैं।
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एजेएल कॉल है जो
इस दुनिया में नहीं है।
जो इस दुनिया में नहीं है, ये करेक्ट।
लेकिन अविरूप जिस व्यक्ति आज की तारीख में जिंदा नहीं है, अपने बचाव के लिए क्या, और ये कहा जाए, ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके इस किताब में शायद वो मुख्य विलेन है, आपने बहुत सारी जिम्मेदारी उनके सिर पे डाली।
मैं पलटा सवाल आपको करता हूँ,
जो व्यक्ति जिंदा नहीं है,
मैं पलटा सवाल आपको करता हूँ और इस बात पे आप मेरे को कृपया हाफ मिनट दें। एक लड़की जो 13 साल की थी, उसके बारे में कोर्ट में क्या क्या कहा गया, अपने श्रोताओं को बताएं। कॉल साहब जो है वो दुनिया में नहीं है, बट जब थे तब क्या कहे थे वो कोर्ट में कि ये बच्ची एक कंसेंशुअल सेक्स एक्ट में शी वाज कॉट, इन पे उन्होंने मोटिव बनाया विदाउट ए सिंगल श्रेड ऑफ हार्ड एविडेंस। तो इस व्यक्ति को सिर्फ ये बात कह के कि वो आज इस दुनिया में नहीं है आप टाल नहीं सकते। उन्होंने उनका लेगेसी ये है कि वो तो दुनिया में नहीं रह गए पर कॉन्सिक्वेंस टू हिज एक्शंस देर आर टू पीपल सफरिंग ए ग्रेव फेट। दहिया साहब इनको कैसे पता है? मैं ये कहता हूँ जो कोर्ट में आके जो कहते हैं कि डॉक्टर तलवार ने इनको देखा और ये कोर्ट में एक शालीनता भी एक चीज़ होता है पर ये बार बार ये चिल्लाना कि संभोग संभोग दहिया साहब से कहलवाया ये कॉल साहब को ये कैसे पता है कि गला काटने के बाद डॉक्टर तलवार ने पल्स देखा? क्या वो वहाँ पे थे? ये सब बातें जो है ये कोर्ट में अंडर ओथ कहना आपको क्या लगता है इसमें शालीनता या इवन ट्रूथफुलनेस है? पलटा सवाल आपके लिए आरुषि के बारे में जो जो भी कहा गया था प्रूफ के बिना आपको क्या लगता है वो सही था? आप उसको क्या कहेंगे?
एक दंपत्ति का अगर एक बच्चा 13 साल की बच्ची के साथ अगर इस तरह का हादसा होगा तो लोगों की सिंपथी तो राजेश और नुपुर के साथ जानी चाहिए थी।
जाने चाहिए
उनकी तरफ से गलती हुई कि जो परसेप्शन का बैटल वो हार गए।
जाने चाहिए तो थी पर अगर एक सीनियर रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर आके ये कहता है कि बाप और बेटी दोनों इक्वली डिबॉच्ड थे और ऐसा ऐसा होता था उनके घर में और ये सारी बातें मीडिया में अगर अनब्लिंकिंगली छपा गया तो परसेप्शन पे एक इम्पैक्ट तो होगा। एक बड़े वेल नोन कॉलमनिस्ट उनको लगता है द तलवार इज़ गिल्टी। साहब ये मर्डर ट्रायल है इस पे बिलीफ या परसेप्शन ये सब बातें आना ही नहीं चाहिए।
आलोचक ये भी कहेंगे अविरुक की आप एक पत्रकार हैं आप कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हैं
बिल्कुल
आप सर्टिफाइड लॉयर नहीं हैं आप सर्टिफाइड फोरेंसिक साइंटिस्ट नहीं
हैं मैं सर्टिफाइड जर्नलिस्ट भी नहीं हूं
है ना तो आप जो है उन लोगों पर सवाल उठा रहे हैं जो दिन रात उसी काम में लगे रहते हैं चाहे वो सीबीआई के लोग हों या फिर फोरेंसिक साइंटिस्ट हों आप उन पर सवाल उठा रहे हैं
बिल्कुल उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स पे बेस करके मैं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने खुद ये लिखा है साहब आपने ये पिलो कवर का सील जो है तोड़ा है मेरे को कैसे पता है तोड़ा है क्योंकि उस ये फोरेंसिक एविडेंस जो है वो फोरेंसिक लैब से अंडर सील आता है ये सबको पता है और ये सील खोलने का जो परमिशन जो है सिर्फ कोर्ट दे सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स या सीबीआई इस सील को काट के इसको खोल के उस चीज का फोटोग्राफ लेना या कुछ भी करना ये इलीगल बात है। तो ऐसे तीन पीसेस कम से कम ऑफ क्रूशियल एविडेंस एक तो एक पीस ऑफ एविडेंस जो तलवार दंपति के बिल्कुल फेवर में जाता और किसी और पे शायद फिंगर पॉइंट करता वो फिर ये गोल्फ क्लब्स जो हैं वो फिर नुपुर तलवार की ड्रेस जो है वो ये सारी चीजें इन्होंने सील खोल के कोर्ट आने के कई दिन पहले सालों पहले सील खोल के रख दिए थे। तो ये जो है ये हाउ डज द कोर्ट इवन अलाउ दिस ये मेरा सवाल ये है।
किताब के आखिर में आपने बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल्स दिए हैं उनमें एक प्रोफाइल है जज श्यामलाल का जो रिटायर हुए उसके बाद से अभी वो प्रैक्टिस करते हैं इलाहाबाद में रहते हैं। आपने कहा है कि उन्होंने जो अपना ऑर्डर दिया था उसमें बहुत ही उन्होंने हाई साउंडिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया और आपने थोड़ा एक सेटरिकल अंदाज में उस पीस को लिखा है तो आपके आलोचक ये कहेंगे कि आप थोड़ा उन्हें हल्के से पेश करने की कोशिश।
जज श्यामलाल का इंटरव्यू वर्बटिम इंटरव्यू है उनका अंग्रेजी या लैक ऑफ इट या जो भी कहें आप ये सारे वर्ड्स जो है
नहीं तो ये करने की क्या कोशिश कर रहे थे आप?
ये उनके वर्ड्स है
जी
ये एक मर्डर ट्रायल कन्विक्शन है इसमें हर एक शब्द सोच के विचार करके डालना चाहिए। कोई भी जजमेंट दिखा दीजिए जहां पे विली और पेकर जैसे शब्द यूज किए गए हैं उनका अंग्रेजी पे सवाल उठता है इसीलिए मैंने उनको पूछा।
जुडिशियल रिकॉर्ड शेक्सपियरियन इंग्लिश का इस्तेमाल करता है बहुत ही पुरानी स्टाइल की अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है विक्टोरियन इंग्लिश का इस्तेमाल करता है अविरुक उसका केस से क्या ताल्लुक है?
आप विली और पेकर को आप शेक्सपियरियन कहेंगे या विक्टोरियन कहेंगे कौन सा
उसका केस से क्या ताल्लुक है मेरा सवाल?
बिल्कुल ताल्लुक है बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड। इसमें सारे जो शब्द जो लिखे हैं अगर उनको मॉन्स्टर कहा गया या फीनडिश एंड फ्लेजिटिशियस कहा गया ये सारे शब्द वहां जाएगा।
आपका क्या टेक है क्या आपकी समझ है भारतीय जो जुडिशियल सिस्टम है जो अदालतें हैं जो वकील हैं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है कितना चैलेंजिंग है किसी के लिए न्याय प्रक्रिया से होकर गुजरना?
मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है कोई मर रहा है रास्ते पे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उस शख्स को हॉस्पिटल ले जाएं या पुलिस स्टेशन ले जाएं अगर मृत हो। इसका कारण क्या है कि इट इज़ नॉट दैट इंडियंस आर हार्टलेस, इनको ये लगता है कि अगर मैं इस मामले में अगर इन्वॉल्व हो जाऊं तो मेरे को जाना पड़ेगा थाना और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है।
कई लोगों के लिए अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हुआ, ये अभी भी साफ नहीं है।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बड़ा पोलराइजिंग सा केस है। एक ड्रॉइंग रूम, ऑर्डिनरी ड्रॉइंग रूम में भी अगर डिस्कशन होता है इस पर तो तुरंत बड़ा क्लियरली दो साइड बन जाता है इस पर। मेरे हिसाब से दोनों साइड मेरे हिसाब से को पूरा इन्फॉर्मेशन था नहीं। मेरा कोशिश यही है कि जितना तक मैं पब्लिक रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड, टेस्टिमनी, इंटरव्यू, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं सारा आके सामने रखूं एंड देन आस्क देम, नाउ यू आर इन्फॉर्म्ड, नाउ मेक अप योर माइंड।
अविरूप सेन से विनीत खरे की बातचीत का ये दूसरा हिस्सा आपने सुना। इसका पहला हिस्सा आपको कल ही हम सुनवा चुके हैं और अब आज के अखबारों में क्या खबरें हैं इस पर नज़र डाल चुके हैं प्रभात पांडे, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बताइए क्या है आज के अखबारों में।
जी निखिल, कल जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हैं उनके साथ संकट में घिरी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और व्यापम घोटाले में आरोपों से घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी बैठक का जिक्र है।
जी,
और साथ ही इन अखबारों में ये भी है कि बीजेपी ने मन बना लिया है कि इनका साथ देंगे, वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ खड़े रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है शाह मीटिंग सिग्नल नो रिट्रीट, यानी कि अमित शाह की इनके साथ बैठक हुई लेकिन बीजेपी का जो रुख है उस पर कोई बदलाव नहीं आया है। मुश्किलों में फंसे अपने नेताओं का साथ देने वाले,
इनके इस्तीफे की कोई
कोई नहीं, इस पर बीजेपी ने साफ कर दिया। दैनिक भास्कर में भी संसद के मानसून सत्र का हवाला देते हुए हेडलाइन है कि संसद में कल से शुरू होगा मुकाबला। इसके अलावा द पायोनियर में हेडलाइन छपी है बीजेपी प्लान्स स्ट्रेटजी टू ब्लंट अपोजिशन अटैक, मानसून सत्र में विपक्ष से निपटने के लिए बीजेपी ने
मतलब काफी हंगामा होने
जी
वाला
कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस तरह से बीजेपी ने। साथ ही जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जो जबरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है वो भी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई। नई दुनिया में हेडलाइन छपी हुई है महाकाल की नगरी में मेघों का तांडव, भगवान संकट में। भगवान संकट में इसलिए लिखा है क्योंकि कई मंदिर डूब गए हैं।
जी
जी, और साथ ही दैनिक भास्कर में हेडलाइन है उज्जैन में 24 घंटे में 18 इंच बारिश।
खबर है कि सोना सस्ता हो गया है।
जी जी, सोना ढाई साल में 7,000 रुपए सस्ता हो गया है।
अच्छा, ये पिछले 2,500 में उसकी कीमत इतनी कम हो
गई, इतनी तक कम हो गई है, तो सोना आप खरीद सकते हैं।
बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे जी इन अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब डालते हैं उन खबरों पर नजर जिन पर आज बीबीसी नजर डालेगा।
जल्दी जल्दी मैं बता दूं वो खबरें जिन पर सोमवार को होगी हमारी नज़र। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई है। साथ ही दिल्ली में सोमवार से सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखना महंगा हो जाएगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने मनोरंजन कर 20 से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इसके अलावा सोमवार को ही यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में व्यापम घोटाले पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई सीबीआई की अर्जी पर हो रही है। इसके अलावा ग्रीस में 3 सप्ताह के अंतराल के बाद बैंक फिर से खुल रहे हैं और नाइजीरिया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी आज ही अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात कर रहे हैं जिसमें बोको हराम से निपटने के तरीकों पर चर्चा हो सकती है।
और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। उज्जैन में बारिश ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई मंदिर डूब गए हैं। यमन के दक्षिणी शहर अदन में हूती विद्रोहियों की गोलीबारी में कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई है। अमरीका में बराक ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को समीक्षा के लिए अमरीकी कांग्रेस के पास भेज दिया है। जर्मनी की चांसलर अंगेला मेर्कल ने कहा है कि वो ग्रीस को दिए गए ऋण पर छूट दिए जाने की चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन उससे पहले वहां पर आर्थिक सुधार के प्रयासों की रूपरेखा तैयार होनी ज़रूरी है। फ्रांस के मशहूर फ्रेंच रिवेरा बीच को बंद करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस सप्ताह के अंत में सऊदी के शाह सलमान फ्रांस छुट्टियां मनाने जाएंगे जिस वजह से ये बीच बंद कर दिया जाएगा। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे प्रभात पांडे। आपसे अगली मुलाकात होगी 1 घंटे बाद विश्व भारती में। स्टूडियो मैनेजर राजेश चौहान के साथ प्रभात पांडे और निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।